on something. अंतर्मुखी सदा सुखी आध्यात्मिक क्षेत्र में निरंतर आत्मोन्नति की अनुभूति करने के लिए आवश्यकता है कठोर तप साधना की और तप साधना में विशेष गहन तथा सुंदर अनुभव करने के लिए आवश्यकता है अंतर्मुखी बनने की, क्योंकि योगी हमेशा अंतर्मुखता की गुफा में बैठता है और बहुत सुंदर तप साधना में अनुभव करके स्वयं को आध्यात्मिक उपलब्धियों से आध्यात्मिक प्राप्तियों से संपन्न करता रहता है। इसी के यादगार में भक्ति मार्ग में विशेष देवताओं के मंदिर के सामने दरवाजे पर कछुए का चिन्ह भी दिखाते हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य यह है कि जो आत्माएं संगम युग में कछुआ वृत्ति अर्थात अंतर्मुखता की वृत्ति को धारण करते हैं वही ऐसे महान देवताएं बनते हैं। तो इसलिए अंतर्मुखी सर्व प्राप्तियों से संपन्न होने के कारण सदा सुखी रहता है। अंतर्मुखी सदा सुखी इसके संदर्भ में विशेष पांच मुख्य लाभ मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अंतर्मुखी बनने से सबसे पहला लाभ यह होता है कि इस पुराने दुनिया से हमारा बेहद का वैराग्य हम अनुभव करते हैं, क्योंकि जितना पुरानी दुनिया से वैराग्य अनुभव होता है उतना ही परमात्मा से अनुराग अर्थात प्यार हमारा बढ़ता जाता है। आज का जमाना बहुत खराब जमाना है, चारों तरफ माया का बोलबाला है। जमा ना अर्थात जमा प्लस ना, जमाना ऐसा है जो जमा का खाता बढ़ने नहीं देता है, जबकि वर्तमान समय है सर्व खजानों को जमा करने का समय। तो ऐसे समय जमा का खाता बढ़ाने के लिए विशेष आवश्यकता है अंतर्मुखी बनने की। अंतर्मुखी बनना अर्थात मन का मौन, मुख का मौन, आंखों का मौन, वृत्ति का मौन, ये सभी जो माया के आने के दरवाजे हैं इन सभी मौन को धारण करके बंद हो जाते हैं। जो बाह्यमुखी होते हैं वो बाहर की दुनिया में रुचि रखते हैं, लेकिन अंतर्मुखी हमेशा पुरानी दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से न्यारे स्वयं को अनुभव करते हैं। वो हमेशा स्वयं को मरजीवा समझते हैं। हम पुरानी दुनिया से मर चुके हैं और नई दुनिया में, अलौकिक दुनिया में, संगम योगी जीवन में जीवन जी रहे हैं। दूसरा लाभ है, जो अंतर्मुखी बनते हैं वो हमेशा सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहते हैं। अंतर्मुखी बनने से स्वयं का वो दर्शन इस सृष्टि चक्र में सदा करते रहते हैं, जिससे हमेशा वो खुशी के झूले में झूलते रहते हैं, अपने भाग्य के गीत गाते रहते हैं। वहां मेरा भाग्य, वहां ड्रामा, वहां बाबा के गीत गाते रहते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा खुशी की चमक छाई रहती है। उनका खुशनुमा चेहरा देखकर कई बार दुनिया वाले कहते हैं कि आप इतना खुश कैसे रहते हो, आप इतने मोटे ताजे कैसे बनते हो। तो जवाब वो देता है कि चक्की का आटा खाते हो आप। तो जवाब में वो यही कहता है कि जिस चक्की का आटा आप खाते हैं उसी चक्की का आटा हम भी खाते हैं, लेकिन हम दुनिया के सभी चक्रों से फारिग रहकर हमेशा सुदर्शन चक्र घुमाते रहते हैं, इसलिए बीमारियों से दूर रहते हैं, खुशी की खुराक खाते रहते हैं और खुशी की खुराक बांटते रहते हैं। तीसरा लाभ है, जो अंतर्मुखी रहते हैं वो सदा स्वचिंतन का आनंद लेते हैं। स्वचिंतन में वो सदा मगन रहते हैं और परचिंतन तथा व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहते हैं। तो स्वचिंतन में मगन रहने से हमेशा वो समान की सीट पर सेट रहते हैं, जिससे हमेशा उनके संकल्प श्रेष्ठ चलते हैं, श्रेष्ठ बोल वो बोलते हैं, श्रेष्ठ कर्म वो करते हैं, परिणाम स्वरूप श्रेष्ठ संस्कार उनके बनते हैं। उनके चलन और चेहरे से रॉयल्टी दिखाई देती हैं। छोटी मोटी बातों में उनका मन नहीं जाता है, नहीं खींचता है। इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी रहते हैं। चौथी बात है, अंतर्मुखी हमेशा आत्मविश्लेषण तथा आत्म अन्वेषण में मगन रहते हैं। आत्मविश्लेषण अर्थात एकांत में बैठकर आत्मा का बहुत गहराई से निरीक्षण करना। तो आत्मविश्लेषण करने से उन्हें अपनी कमी का, त्रुटि का, खामी का पता चलता है। जैसे दुनिया में रोगी को रोग का पता चलता है, तो जब तक उस रोग से वो मुक्ति नहीं पाते हैं तब तक वो चैन की सांस नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही अंतर्मुखी अपनी कमी का पता चलते ही उसको मिटाने का ही प्रयास करते रहते हैं। आत्म अन्वेषण अर्थात आत्मा में जो सुसुप्त शक्तियां हैं, अंतर्निहित शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जागृत करना, उन शक्तियों को एक्टिवेट करना। तो अंतर्मुखी रहने वाले अपनी सुसुप्त शक्तियों को बहुत अच्छी तरह से जागृत करते हैं, परिणाम स्वरूप उनके व्यक्तित्व का विकास होता रहता है। इसलिए हमेशा उन्नति की अनुभूति वो करते रहते हैं। पांचवी बात है अंतर्मुखी हमेशा एकांतवासी बनकर एकाग्रचित्त रहते हैं। मनोवैज्ञानियों क्यों ने ये सिद्ध किया है कि 70% इंफॉर्मेशन नेत्र मार्ग से आत्मा में प्रवेश होती है। जब हम एकांत में बैठते हैं तो जो इंफॉर्मेशन आत्मा में भर जाती है उसके बारे में ही संकल्प बार बार हमारे मन में चलते रहते हैं। परिणाम स्वरूप योगाभ्यास में एकाग्रता नहीं हो पाती है। लेकिन अंतर्मुखी देखते हुए न देखने का अभ्यास करता है। आपने देखा होगा योगियों की आंखें हमेशा आधी खुली दिखाते हैं, पूरी खुली भी नहीं दिखाते हैं, पूरी बंद भी नहीं दिखाते हैं, आधी खुली दिखाते हैं। अर्थात जो अंतर्मुखी योगी होते हैं वो इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, लेकिन अपने दिव्य नेत्र से अपने इष्ट को बहुत दूर याद करते हैं और उनकी याद में खोए रहते हैं और उसका संपूर्ण आनंद लेते हैं। क्योंकि पूरी एकाग्रता के साथ जब हम साधना करते हैं तो उस साधना में हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति भी होती है। तो इस प्रकार से पांच बातों की प्राप्ति अंतर्मुखता के द्वारा हमें होती है। और ब्राह्मण जीवन में अंतर्मुखी होकर रहना ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो अंतर्मुखता में दिलचस्पी लेते हैं, रुचि लेते हैं, वही इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि अंतर्मुखी बनने से मन और बुद्धि का भटकना हमारा बंद हो जाता है, मन बुद्धि को ठिकाना मिल जाता है। तो वर्तमान समय बाबा का विशेष इशारा हम बच्चों के प्रति मिला है कि मीठे बच्चे अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय पूरा हो चुका है, अभी जो समय चल रहा है वो समय शक्तिशाली योगाभ्यास करने का, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है। क्योंकि बहुत थोड़ा समय बाकी है, इस सीजन की कोई भी ऐसी मुरली नहीं है जिसमें बाबा ने समय के प्रति इशारा नहीं दिया है। क्योंकि जैसे हम वर्तमान को स्पष्ट देखते हैं वैसे बाबा भविष्य को भी स्पष्ट देखते हैं। तो बाबा जानी जाननहार जानते हैं कि मेरे बच्चों के सामने बहुत विकट परिस्थितियां आने वाली हैं, इसलिए उनकी स्थिति अचल अडोल बनना बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में बाबा ने अशरीर स्थिति की तथा फरिश्तापन की स्थिति की ड्रिल करने का होमवर्क भी हमें दिया है। तो कहने का भाव मेरा यह है कि अभी जो समय चल रहा है, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है, शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है, तो ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो विशेष पांच बातों पर हमें दिल से पुरुषार्थ करना जरूरी है। अगर उन पांच बातों पर आप सिंसियरली पुरुषार्थ करेंगे तो गारंटी है आपकी योग की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी और आप अपने संपूर्णता के समीप पहुंचते जाएंगे। तो वो पांच बातें हम अभी डिस्कस करेंगे।
प्रेम से बस दो
ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति करने के लिए सबसे पहली बात आवश्यक है, बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति करते रहना। बहुत गहराई की अर्थात पूर्णतया खुद में खो जाने की, आत्म अभिमानी स्थिति में पूर्णतया डूब जाने की आवश्यकता है। जब बहुत गहराई की आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करते हैं तो देह का भान हमारा मिट जाता है। जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं वैसे हम स्वयं को इस धरती पर केवल चमकते हुए चैतन्य सितारे अनुभव करने लगते हैं। बिल्कुल इस देह से न्यारा मैं हूं ज्योति बिंदु सितारा। तो जितनी गहराई की आत्म अनुभूति हम करते हैं तो आत्मा का आभा मंडल बहुत विशाल बनता जाता है। आत्मा के जो सात गुण हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद शक्ति, सातों गुणों की बहुत सुंदर अनुभूति हम करने लगते हैं। ऐसा ही अनुभव होता है मैं आत्मा सप्त ऋषि सात गुण वाला सप्त ऋषि आत्मा इस देह रूपी गुफा में विराजमान हूं। और शक्तिशाली आत्म अनुभूति करना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा अनुभव करना या मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा अनुभव करना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जितनी शक्तिशाली आत्म अनुभूति हमारी होगी उतना आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज जास्ती होगा और उतना जो बाबा स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं उनसे बहुत पावरफुल करंट आत्मा खींचने लगेगी, जिससे शक्तिशाली स्थिति की, ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति बढ़ती जाएगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ऐसे शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होना है और बहुत गहराई से उसकी अनुभूति को बढ़ाना है। पहली बात। दूसरी बात है, बहुत गहराई से और बहुत शक्तिशाली रूप में बाबा के स्वरूप को देखना और अनुभव करना बहुत गहराई से। बाबा के स्वरूप को देखना अर्थात परम धामी सत्यम शिवम सुंदरम, जो बाबा का प्यारा स्वरूप है, बहुत नजदीक से देखें कितना बाबा का स्वरूप प्यारा है, सुंदर है, मन कितना पवित्र है, बुद्धि कितनी दिव्य है, संस्कार कितने पवित्र हैं, पर्सनालिटी कितनी रॉयल है, ऑलमाइटी पर्सनालिटी है। ऐसे बाबा के स्वरूप को बहुत समीपता से देखें, देखने का आनंद ले, क्योंकि बाबा जैसा सुंदर तीनों जहां में कोई भी नहीं है। दूसरा शक्तिशाली स्वरूप अर्थात भक्ति मार्ग में योगियों ने जब परमात्मा के स्वरूप की वर्णन किया है तो परमात्मा के स्वरूप की तुलना सूर्य के साथ की है। सूर्य जैसा भौतिक शक्तियों का प्रचंड स्रोत है, वैसे परमात्मा भी आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, अथाह सागर हैं। और सूर्य के प्रकाश में भस्म करने की जो क्षमता होती है, धरती पर जो कचरा होता है, बारिश में गंदगी होती है, वो भस्म करता है। ऐसे ज्ञान सूर्य बाबा का प्रकाश भी जब आत्मा पर पड़ता है योगाभ्यास से, तो आत्मा में जो भी कचरा है, गंदगी है, अलाय है, जो माया के जर्म्स हैं, रोग हैं, वो सब भस्म हो जाता है। लेकिन जब अर्जुन को परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा था तो अर्जुन ने वर्णन किया कि परमात्मा जो स्वरूप है, परमात्मा का ये जो सूर्य है, इस सूर्य से हजारों गुणा तेजोमय है। ऐसा क्यों कहा है? इस सूर्य से अगर हजारों गुणा तेजोमय हो तो वो तो हमारा बाप है, उससे हम मिल भी नहीं सकेंगे, देख भी नहीं सकेंगे। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है? ये जो सूर्य है, ऐसे आसमान में कई सूर्य होंगे तो भी उनका प्रकाश केवल एक ही दुनिया में फैलता है, साकारी दुनिया में ही फैलेगा। लेकिन परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, वो इतने प्रखर हैं, इतने शक्तिशाली हैं, जो तीनों लोगों में उनका जो प्रकाश है निरंतर प्रवाहित रहता है, इतने वो शक्तिशाली हैं। जो भी आत्मा जहां भी उनकी शक्तियों की अनुभूति करना चाहे, जैसे ही आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, उनकी शक्तियों की अनुभूति कर सकता है। तो ऐसा बाबा का प्रखर स्वरूप हमें परम धाम में देखना है और अनुभव करना है। ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति को बढ़ाने के लिए। देखते रहे देखते रहे देखते रहे, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, झूलता रहता है, आनंद लेता रहता है, ऐसे हम भी बाबा के स्वरूप को देखते रहे, बस देखते ही रहे, आनंद लेते रहे। देखते ही रहने से क्या होगा, बाबा का जो स्वरूप है आपके दिल दिमाग पर बाबा की छवि छप जाएगी। जब चाहे जिस घड़ी चाहे एक सेकंड में आप बाबा को देख सकेंगे, बाबा की याद में खो सकेंगे। तीसरी बात, ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है परमात्मा के प्रति दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहते रहना। हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे, परमात्मा की प्रति असीम प्यार हमारे दिल में सदा हो। जहां प्यार वहां बुद्धि की तार हमेशा जुटी रहती हैं। जितना प्यार उतना लंबे समय तक तार हमारा बुद्धि का उनके साथ जुटा हुआ रहता है। प्यार होता कब है, किससे होता है, कब होता है, बढ़ता कब है? प्यार का आधार है प्राप्ति। जितनी जिससे प्राप्ति होती है उतना उससे हमारा प्यार स्वतः ही बढ़ता जाता है। ज्वलंत उदाहरण है मीरा का। केवल दो घड़ी मीरा को कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, चमचम करता हुआ कृष्ण उसको दिखाई दिया, साक्षात्कार हुआ, केवल दो घड़ी। उसके पीछे वो पागल हो गई, मेरा तो कन्हैया, मेरा तो कन्हैया, जिधर देखती हूं उधर तू ही तू है कन्हैया, एक भी जगह खाली नहीं है जहां कन्हैया नहीं है। इतनी अटूट लगन मीरा को कृष्ण के प्रति लगी थी। अगर उसकी भेंट में हमें जो प्राप्तियां हो चुकी हैं उसका वर्णन करेंगे तो उसको तो केवल साक्षात्कार हुआ, हमें साक्षात भगवान मिल गया है। न केवल साक्षात भगवान मिल गया है, साक्षात वो हमारी पालना कर रहा है। न केवल पालना कर रहा है लेकिन उसके छत्र छाया में हम चल रहे हैं, पल रहे हैं, सारे खजाने वो लुटा रहा है। तो जो लगन मीरा को लगी थी उससे कई गुना लगन हमें भी लगे, हमें भी बाबा के बिना कुछ भी नजर न आए। मीरा को कन्हैया दिखाई देता था क्योंकि मीरा के आंखों में कृष्ण बसा हुआ था, वो कृष्णमय बन चुकी थी। बहुत प्यारी चीज जो होती है वो आंखों में बस जाती है। तो जब बाबा हमारे नैनों में बस जाता है, हम शिवमय हो जाते हैं, तो बाबा के बिना हमें कुछ नजर ही नहीं आता है, हम भगवान के पीछे पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। भगवान का नाम भगवान क्यों पड़ा है, क्यों उन्हें भगवान कहते हैं, दूसरा नाम क्यों नहीं पड़ा है? उसमें राज है, बहुत गहरा राज है। दुनिया में कहते हैं ये बहुत धनवान है, ये बहुत रूपवान है, ये बहुत आशावान है, ये बहुत हिम्मतवान है, और ये भगवान है, अर्थात सभी आत्माओं को यहां से भगाकर ले जाने में माहिर है। हर मुरली में बाबा कहते हैं मुझे ही याद करो, मुझे प्यार करो, मुझे याद करो, तो हमारी बुद्धि को भगाकर ले जाता है और उल्टी फांसी पर वहां लटका देता है, बस मुझे प्यार करो। लेकिन जो आत्माएं परमात्मा से प्यार करते हैं सारे खजाने परमात्मा उनके पीछे लुटा देता है। इतनी बड़ी प्राप्ति हमें होती है, उसमें हमारा कल्याण है। विवेकानंद जी ने हंसी हंसी में कहा तो ये सारा संसार पागलखाना है, सारे पागल है इस संसार में। तो क्यों, क्या बात है, कैसे पागल है? कोई धन के पीछे पागल है, कोई विद्या के पीछे पागल है, कोई व्यक्ति के पीछे पागल है, कोई मान प्रतिष्ठा के पीछे पागल है, और कोई प्रभु के पीछे पागल है, जिन्हों को प्रभु के बिना और कुछ नजर ही नहीं आता है, वो सबसे महान है प्रभु के पागल प्रेमी। क्यों वो सबसे महान है? क्योंकि वो सदा काल के लिए, लंबे काल के लिए अविनाशी प्राप्तियां करते हैं। इस दुनिया के तो लोग अल्पकाल की प्राप्तियां करते हैं, योगी प्रभु के पागल प्रेमी अविनाशी खजाने, सदा काल के लिए खजाने प्राप्त करते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे वो महान है। तो हमारे दिल में जितना प्यार बढ़ता जाएगा, उतनी लवलीन स्थिति हमारी बढ़ती जाएगी। परमात्म प्यार में हम डूबे रहेंगे, खोए रहेंगे, समाए रहेंगे, और शिव के साथ एकदम कंबाइन आनंद होकर खुदा पर हम फिदा हो जाएंगे। जब खुदा पर फिदा हो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकती। ऐसा ये प्यार, पवित्र प्यार में इतनी मैग्नेटिक पावर है, इतनी चुंबकीय पावर है, जो हजारों मील पर बाबा है दूर, वो दूरी को समाप्त करके आमने सामने का अनुभव कराता है। एकदम कंबाइंड स्टेज की अनुभूति हमें प्यार के आधार से होती है। चौथी बात है, क्योंकि लवफुल स्थिति ही पावरफुल स्थिति में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफर होती है। जब परमात्मा के साथ में हम कंबाइंड हो जाते हैं, तो परमात्मा ज्ञान सूर्य भी है, तो वो लवफुल स्थिति शक्तिशाली स्थिति में, पावरफुल स्थिति में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है। इसलिए लवलीन स्थिति अनुभव करना बहुत जरूरी है। लवलीन स्थिति के बाद में ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति ऑटोमेटिक हमारी बढ़ती है। चौथी बात है, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए हमारा दिल जो है खुशी और नशे में झूमता रहे। जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं, हमारा मन बुद्धि खुशी से नशे से भरपूर होती हैं, तो उस प्रभु मिलन का मजा कुछ और ही होता है, उसका आनंद कुछ और ही होता है, उसमें प्राप्तियां कुछ बढ़कर ही होती हैं। मजबूरी से हम बैठते हैं, योग लगाते हैं, लाल लाइट लगते हैं, और यही घंटा मुझे बैठना होगा, बड़ी मजबूरी से बैठते हैं, खुशी कहां गायब हो जाती पता नहीं। भगवान से मिलन हम मना रहे हैं, तो हमारी मन बुद्धि एकदम खुशी से नशे से भरपूर होगी, तो परमात्मा मिलन का बहुत सुंदर आनंद अनुभव हमें होता रहेगा, बहुत गहन अनुभूतियां हमें स्वतः ही होती रहेगी। इसलिए योगाभ्यास में बैठते समय मन बुद्धि हमारी नशे से भरपूर हो, एकदम ओतप्रोत हो, एकदम संपन्न हो, तो मिलन का मजा ही कुछ और होगा। पांचवी बात है, ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति करने के लिए आवश्यकता है एकांतवासी बनकर योग की साधना में पूरी एकाग्रता की अनुभूति करना। 100% एकाग्रता उसमें हो, 1% भी डिस्ट्रैक्शन न हो। ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति करनी है तो, क्योंकि एकाग्रता लेंस का काम करती है। सूर्य में बहुत शक्तियां हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में अगर हम कागज जलाना चाहते हैं नहीं जलता है, लेकिन जब हम लेंस पकड़ते हैं तो सूर्य का प्रकाश लेंस के द्वारा जब वो पेपर पर पड़ता है तो अथाह भौतिक शक्तियां, प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो कागज भस्म हो जाता है। तो ऐसे जो ज्ञान सूर्य परमात्मा है उन पर पूरी एकाग्रता के साथ हमारा कनेक्शन होता है तो बुद्धि रूपी लेंस के द्वारा जो शक्तियों की किरणें ट्रांसफर होती हैं और पूरी एकाग्रता के साथ आत्मा पर बिंदु पर एकाग्र होती हैं तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, योग की ज्वाला धधकने लगती है और उस ज्वाला में हमारे विकर्म जो है भस्म हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो जाते हैं। हम सभी ने कलप कलप ऐसी ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति की है, इसकी यादगार शास्त्रों में भी गाई गई है, बहुत सुंदर दृष्टांत उसके लिए देते हैं कि गुरुजी द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन को धनुर्विद्या की शिक्षा पढ़ा रहे थे, साथ साथ अर्जुन के उसके सहपाठी भी थे। तो एक दिन द्रोणाचार्य जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक वृक्ष पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और उन्होंने लक्ष्य दिया कि पंछी की आंख में जो काली पुतली है उस काली पुतली पर आपको तीर भेदना है, तीर मारना है, ये लक्ष्य दिया था। फिर गुरुजी एक एक को बुला रहे हैं, ऐसा पाठी को बुला रहे हैं, बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, वृक्ष की डाली भी दिखाई दे रही, पंछी भी दिखाई दे रहा है, आंख भी दिखाई दे रहा है। दूसरे को बुलाया, आओ क्या दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है पंछी। अर्जुन आओ, क्या दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल वो आई बॉल, वो बिंदी जो है ना, काली पुतली, आंख भी नहीं पंछी की, केवल वो काली पुतली ही नजर आ रही है। फिर उन्होंने कहा तीर मारो, तो उसने तीर मारा और उस लक्ष्य को भेदा और पास भी तानर हो गया। ये हमारी यादगार है। हमारा जो बुद्धि रूपी नेत्र है केवल वो परम बिंदी है, सुप्रीम स्टार है, बाबा जो है उस बाबा पर ही एकाग्र हो, ऐसा एकाग्र हो ताकि एकाग्रता के द्वारा अथाह शक्तियां बीम फोकस की तरह आत्मा में ट्रांसफर होती जाए, आत्मा में भरते जाए और अथाह योग की अग्नि, अथाह शक्तियां हम प्राप्त कर सकें, शक्तियों से आत्मा भरपूर हो जाए। ऐसे सुंदर योग की अनुभूति जब होती है तो उसमें आत्मा एकदम हल्की फुल्की अनुभव होती है और बहुत शक्तियों से बैटरी जैसे कि आत्मा की फुल चार्ज हो जाती है। अभी समय चल रहा है ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने का, अमृत वेले या शाम के समय ऐसा योगाभ्यास हमें करना ही है, ऐसी दृढ़ता के साथ हमें बैठना है। ऐसी दृढ़ता के साथ बैठेंगे तो जरूर आपको सफलता उसमें मिलेगी। योगाभ्यास में बैठते समय पूरी दृढ़ता के साथ बैठना है कि किसी भी कीमत पर मुझे ऐसी ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव करना ही है। ऐसी दृढ़ता के साथ बैठेंगे तो गारंटी है आपको बहुत सुंदर शक्तिशाली योग की अनुभूति होगी ही, बाबा कराएंगे ही। क्योंकि योगाभ्यास करने के दो लक्ष्य हैं। क्यों हम योगाभ्यास करते हैं? पहला लक्ष्य है परमात्म संघ का बहुत असीम आनंद लेना, उनकी कंपनियों को एंजॉय करना, उनका प्यार का भरपूर आनंद लेना, ये एक लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य है सफल योगाभ्यास अर्थात उस शक्तियों के सागर से आत्मा की बैटरी में शक्तियां भरना, आत्मा को शक्तियों से भरपूर करना, संपन्न करना, ये दूसरा लक्ष्य योगाभ्यास का है। तो ऐसी योग की अनुभूति आप करना चाहेंगे क्योंकि बाबा ने इशारा दिया है अभी अनुभव की अथॉरिटी बनना है। जितनी अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे उतना आने वाले समय में अचल अडोल स्थिति आप बनाने में सफल होंगे। करना चाहेंगे? हाथ उठाओ सभी। बहुत सुंदर योग की अनुभूति आपको हम कराएंगे। सभी करना चाहेंगे ना? बहुत अच्छा, अभी बीच में कोई भी नहीं उठेंगे, क्योंकि बीच में उठते हैं तो किसी न किसी को डिस्टर्ब होता है, इसलिए बीच में कहीं नहीं उठें। ऐसा ही समझे, सवेरे चार अमृत वेले का समय है, चार बजे हैं, सभी तन और मन से फ्रेश होकर बैठे हैं और प्रभु मिलन के आनंद में खो गए हैं। ऐसे स्थिति में आप सभी बैठेंगे, सड़क चुस्त होकर बैठेंगे, इस देह रूपी पवित्र तथा सुंदर मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूं। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आत्मा रूपी दीपक के चहुओर दिव्य प्रकाश का सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ जगमगता हुआ चैतन्य सीतारा हूं। शांत स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा हूं। शांति के प्रकंपन इस शांति वन में चारों ओर फैल रहे हैं। परम शांति की अनुभूति हो रही है। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु दिव्य सीतारा हूं। मुझ आत्मा ने पवित्रता का सुंदर ताज धारण किया हुआ है। पवित्रता की तरंगे चारों ओर फैल रही है। सचमुच मैं कितनी न भाग्यशाली आत्मा हूं। जो बुद्धि रूपी नेत्र से अपने सत्य स्वरूप को बिंदु स्वरूप को, निराकारी स्वरूप को स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। इस संसार में मेरा अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु सितारे के रूप में ही है। मैं आत्मा, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। कितनी सुंदर है ये फरिश्तों की दुनिया, चारों तरफ सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। उस आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस दिव्य प्रकाश की ड्रेस धारण कर ली है। ओह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा, मेरे समक्ष संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूं। बाबा की बाहों में समा गई हूं। बाबा की आंखों में स्नेह के पवित्र मोती चमक रहे हैं। मीठे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना सिकिलधा लाल 5000 वर्षों के बाद पाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे हैं, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जो भक्ति मार्ग में गाते आए हो, तमेव माता च पिता तमेव, वो वायदा मैं निभाने आया हूं। जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो, करते रहो बच्चे। कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो, छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा या बच्ची बनकर मेरे गोदी में खेलो। पिता का निस्वार्थ प्यार अनुभव करो। कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो, अपनी बुद्धि ज्ञान रत्नों से भरपूर करो। कभी परम सद्गुरु के रूप में मुझे अनुभव करो, मेरे वरदानी दृष्टि से अथाह वरदान प्राप्त करो। मेरा वरद हस्त अपने माथे पर अनुभव करो। मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो पलते रहो। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं। ओह कितना सुंदर है ये प्यारा मूल वतन परम धाम। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति है। मेरे प्राणों के प्राण मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे बाबुल मेरे समक्ष विराजमान है। बस दिल कहता है उनकी सुंदरता को देखती ही रहूं, जी भर के देखती ही रहूं, आनंद लेती ही रहूं। बाबा मैं आत्मा दुख के सागर में चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी, गोते खा रही थी, पर हे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकाल कर अपनी शीतल गोद में बिठा दिया। बाबा अतीन्द्र सुख के झूले में बिठा दिया, बाबा मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई। बाबा हे सलोने शिव साजन, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे सजनी के रूप में अपनाओगे, कभी नहीं सोचा था। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने बुद्धि रूपी नेत्र से अपने शिव साजन को देख रही हूं, मेरे दिल में परमात्म प्यार का झरना बह रहा है और मैं अपने साजन के समीप जा रही हूं और उनकी लाइट और माइट के बाहों में समा गई हूं, प्यार के सागर में डूब चुकी हूं, खुदा पर फिदा हो चुकी हूं, दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथा सागर है, शक्तियों के सागर भाव से शक्तियों की प्रखर किरणें निरंतर मुझात्मा पर पड़ रही है, अथा शक्तियां, अथा शक्तियां, मैं शक्तियों के सागर बाप से ग्रहण कर रही हूं, योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। शक्तियों के सागर से अथा शक्तियां मैं आत्मा निरंतर ग्रहण कर रही हूं, मेरी आत्मा रूपी बैटरी शक्तियों से भरपूर हो रही है। पाना था सो पा लिया बाबा, मुझे सब कुछ मिल गया बाबा, लेकिन मेरी एक अंतिम आस है बाबा कि मेरे दिल रूपी मंदिर में केवल आपके ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे, और मैं सच्ची योगी बनकर आपके महिमा के गीत गाती रहूं, संगम की हर घड़ी आपके साथ बिताती रहूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा, परम धाम से वापिस इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में फैल रहे हैं, और इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रहे हैं। शांति शांति शांति।